आरव ने आज शाम लक्षित को घर पर डिनर किया था। आयु हॉस्पिटल में थी तो उसने लक्षित को इस बारे में बता दिया था। लक्षित और आयु हॉस्पिटल से एक साथ ही वापस लौटे थे। आज पार्किंग एरिया में आने के बाद भी लक्षित गाड़ी से नहीं उतरा। आयु गाड़ी से उतरी और उसकी तरफ देखकर हैरानी से बोली, आपको याद है ना डॉक्टर जैन, आज आप हमारे यहाँ डिनर करने आने वाले हैं, आपको कोई काम तो नहीं है ना?
नो नो, आई एम ऑल फ्री, वो कुछ शॉपिंग करनी थी इसलिए वापस जाना होगा, लक्षित ने जवाब दिया।
आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर उसे बाय बोलकर अंदर चली गई। लक्षित उसे जाते हुए देख रहा था और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। वहां से उसने गाड़ी वापस यू टर्न ली और आयु को प्रपोज करने के हिसाब से शॉपिंग करने चला गया। वहीं आयु अंदर पहुंची तो आरव दोनों बच्चों के साथ लिविंग रूम में था। वो उनके साथ बोर्ड गेम खेल रहा था। आयु बच्चों को देखते ही मुस्कुराते हुए हग करने के लिए आगे बढ़ी। तभी आरिशा और आरव एक साथ बोले, प्लीज अभी नहीं। एक साथ बोलने पर आरिशा और आरव ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर आरिशा ने आयु की तरफ देखकर कंधे उठाकर कहा, मॉम प्लीज पहले आप फ्रेश हो जाइए, आप हॉस्पिटल से आई हैं और आपके अंदर से अजीब सी स्मेल आ रही है। आरव ने आरिशा की बात पर हामी भरी और आयु से कहा, चलो कोई तो मेरी बात से अग्री करता है, सच में ये काफी अनबेयरेबल होती है मिसेस खुराना, तुम्हें आदत हो गई है लेकिन हमें अभी तक नहीं हुई। उनके ऐसा करने पर आयु ने उनकी तरफ देखकर मुंह बनाया और कहा, दोनों बाप बेटी एक जैसे हैं, अब तो फ्रेश होने के बाद भी मैं तुम दोनों के पास नहीं आऊंगी। आयु उन पर गुस्सा कर रही थी, तभी आर्य आयु के पास आया और उसके गले लग गया। वो आयु से बोला, लेकिन मुझे मेडिसिन्स की स्मेल अच्छी लगती है मॉम, मुझे भी आपकी तरह न्यूरोसर्जन बनना है। आर्य के हक करने पर आयु के फेस पर स्माइल आ गई। उसने आरिशा और आरव की तरफ देखकर कहा, मेरे लिए मेरा बेटा काफी है, तुम दोनों रहो एक साथ, नक चढ़े कहीं के। आयु ने आर्य को वापस आरव के पास बैठा दिया और फिर फ्रेश होने के लिए अंदर चली गई। दोनों बच्चों को गेम में बिजी करने के बाद आरव लगभग 10 मिनट बाद ऊपर पहुंचा। आयु तब तक नहाकर बाहर आ चुकी थी। आयु वार्डरोब के आगे खड़ी थी और उसने बाथरोब पहना हुआ था। आयु का ध्यान कपड़ों में था, तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए। वो आरव था जो धीमे कदमों से चलकर कमरे में आया था। उसने आयु को पीछे से हक कर रखा था। आरव का सिर आयु के कंधे पर था। आयु ने आरव की आंखों में देखकर कहा, अच्छा अब तुम्हें मेरे अंदर से मेडिसिन्स की स्मेल नहीं आ रही जो तुम मेरे इतना क्लोज हो रहे हो? नहीं, अब नहीं आ रही है, आरव ने तिरछा मुस्कुराकर कहा और फिर आयु के गर्दन पर किस करते हुए हल्के से बाइट किया। उसकी इस हरकत कर आयु ने उसकी तरफ घूर कर देखा और आरव को पीछे की तरफ धकेल दिया। आयु आरव की तरफ पलटी तो आरव ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। आरव ने अपना सिर आयु के सिर से जोड़ते हुए कहा, मुझसे दूर जाने की इजाज़त नहीं है मिसेस खुराना, किस्मत की लकीरों से लड़कर पाया है मैंने तुम्हें, अगर दूर हो भी गई तो वापस इसी किस्मत से लड़ जाऊंगा और तुम्हें अपनी जिंदगी में लाकर रहूंगा। तुम आजकल हर बात पर कुछ ज्यादा ही सेंटी नहीं हो रहे, आयु ने बेपरवाही से कहा, अब हम एक हो गए हैं तो कौन हमें दूर करेगा। हाँ, हो सकता है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जरूर बीच में टांग अड़ाने आ जाए। आई होप तो अब तुम थोड़ा समझदारी से काम लो और उसे हमेशा के लिए अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो। आयु बार बार माहिरा का जिक्र कर रही थी। भले ही वो दूर हो गई हो लेकिन उसके दिल में अभी भी यही डर था कि कहीं माहिरा फिर से कोई कांड ना कर दे। आयु के मुंह से फिर से माहिरा का नाम सुनकर आरव ने ईविल स्माइल करते हुए कहा, और आजकल तुम्हारे मुंह पर कुछ ज्यादा ही माहिरा का नाम रहता है, तुम्हें उससे इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो मुंबई जाने के बाद आई प्रॉमिस मैं उसके साथ सारे रिलेशंस खत्म कर दूंगा, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। बोलते हुए आरव की आवाज़ काफ़ी संजीदा थी। आयु आरव की आवाज़ के पीछे के इमोशन समझ सकती थी। उसने आरव की आंखों में देखा और एक्साइटमेंट में कहा, तुम सच कह रहे हो ना? मैं कभी झूठा प्रॉमिस नहीं करता, पर उसके लिए हमें मुंबई जाना होगा। सोच लो, मुंबई जाने के लिए तुम्हें यहाँ से अपने सारे काम और जॉब को गुड बाय कहना होगा, आरव ने भौहें उठाकर पूछा। आयु ने कुछ भी कहने से पहले थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब में कहा, देखो मुझे यहाँ की जॉब और मेरा हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बिल्कुल होमली एटमॉस्फेयर है, पर तुमने जो प्रॉमिस किया है उसके चलते मैं यहाँ से रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस थोड़ा टाइम दो फिर हम मुंबई चलेंगे। माहिरा को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए आयु ने ये सैक्रिफाइस भी कर दिया। फिर उसने आरव को खुद से दूर किया और वापस अलमारी की तरफ मुड़ते हुए बोली, चलो जल्दी से नीचे जाओ, दोनों बच्चे अकेले हैं, मैं चेंज करके आती हूँ, थोड़ी देर बाद लक्षित भी आ जाएगा, पता नहीं तुमने उसे डिनर पर क्या सोचकर इनवाइट किया है, बस ऐसे ही उसके साथ थोड़ा फन करने का मूड है। खैर छोड़ो, तुम चेंज करने वाली हो ना, लाओ तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, आरव ने तिरछा मुस्कुराकर कहा और फिर से आयु को अपनी बाहों में भर लिया। आयु के हाथ में एक ड्रेस थी। आरव ने आयु के हाथ से ड्रेस को छीन लिया और फिर आयु के कुछ कहने से पहले ही उसके बाथरूम की स्ट्रिंग खोल दी थी। ये क्या कर रहे हो तुम, बच्चे आ जाएंगे, ऊपर से रूम भी लॉक नहीं है, आयु आरव पर नाराज होते हुए बोली, पर उस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
आरव ने आयु का बाथरोब निकालकर नीचे गिरा दिया। आयु गुस्से में उसकी तरफ घूर रही थी, फिर भी आरव अपनी जिद पर अड़ा था। आरव ने उसे कपड़े पहनाने के बजाय अपने करीब खींचा और आयु की बॉडी को अडोर करने लगे। आयु गहरी सांस लेकर बोली, प्लीज नहीं आरव, रात को कर लेना, बच्चे नीचे अकेले हैं। आरव ने आयु की बात पर हामी भरी और उसे कपड़े पहनाने लगा। कपड़े पहनने के बाद आयु ने आरव की तरफ तिरछी निगाहों से देखा और बाहर की तरफ जाते हुए बोली, तुम ना बहुत बुरे हो मिस्टर खुराना, बस अपनी जिद चलाते रहते हो। मन तो कर रहा है उसी लक्षित के साथ चली जाऊं, कम से कम वो मेरी बात तो सुनेगा। आई डेयर यू से इट अगेन मिसेस खुराना, तुम्हें सच में पता चल जाएगा कि मैं कितना बुरा हूं, आरव ने कोल्ड वॉइस में कहा। वो आयु के पीछे पीछे आ रहा था। आयु के पास कुकिंग करने का टाइम नहीं था और ना ही आरव को कुछ खास बनाना आता था, इसलिए उन्होंने बाहर से खाना ऑर्डर किया था। आरव और आयु दोनों नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा लक्षित उनके घर आ चुका था। लक्षित दोनों बच्चों के साथ खेल रहा था और वहां टेबल पर फ्लावर्स और चॉकलेट्स रखी हुई थी। वहीं लक्षित ने जब आरव और आयु को एक साथ रूम से बाहर आते देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ खास अच्छे नहीं थे। आरव आयु के साथ ऊपर रूम में था। वो दोनों नीचे आए तब उन्होंने देखा लक्षित वहां आ चुका था। आयु और आरव ने अभी ठीक से प्रिपरेशन भी नहीं की थी और लक्षित टाइम से पहले आ गया था, यहाँ तक कि उनका ऑर्डर किया हुआ थाना तक नहीं आया था। आरव और आयु को एक साथ देखकर लक्षित के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिगड़े हुए थे। उसने आयु की तरफ देखकर पूछा, शायद मैं टाइम से पहले आ गया। आयु उसे फॉर्मेलिटी के लिए कोई जवाब देती उससे पहले आरव बोल पड़ा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, टाइम से लेट आने वालों की लोग वैल्यू नहीं करते, तो टाइम से पहले आने वाले लोगों की भी कोई कदर नहीं होती है।
ये मजाक कर रहा है, थोड़ा फनी टाइप का है, आयु ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा और फिर आर्य और आरिशा की टेबल समेटने लगी। वैसे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो शॉपिंग करने के लिए गए थे, फिर वापस भी आ गए और चेंज भी कर लिया, आयु ने हैरानी से पूछा। हाँ, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो पास ही के स्टोर से मिल गया था, चेंज करने में टाइम ही कितना लगता है, लक्षित ने जवाब दिया और फिर उठकर आयु की हेल्प करने लगा। हाँ, अकेले हो तो सच में टाइम नहीं लगता, आरव ने ईविल स्माइल करके कहा, जिस पर लक्षित सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। वो आपस में बातें कर रहे थे तभी घर की डोरबेल बजी। आरव बाहर गया और खाना लेकर आया। लक्षित के सामने बाहर से खाना आने पर आयु ने उससे कहा, आई एम सॉरी, पर तुम्हें पता है ना कि मुझे कुकिंग करने जितना टाइम नहीं मिलता। आई होप यू विल नॉट माइंड कि मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया है। इट्स ऑल राइट, जब अकेले होते हैं तब सारा काम अकेले संभालने में प्रॉब्लम होती है। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर खुराना तुम्हारी कोई हेल्प करते होंगे, लक्षित ने आरव की तरफ देखकर कहा। लक्षित जानबूझकर आरव को टॉन्ट मार रहा था, पर आरव का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो चुपचाप जाकर टेबल पर खाना सर्व करने लगा। कुछ ही देर में वो सब डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। लक्षित ने खाते हुए पूछा, वैसे अचानक डिनर पर बुलाने का आइडिया कहाँ से आया? हम लोग पिछले 3 साल से ज्यादा टाइम से पड़ोसी हैं, आज से पहले तो तुम लोगों ने मुझे खाने पर कभी इन्वाइट नहीं किया। मैं तो अभी भी नहीं करती क्योंकि मुझे गेट टुगेदर पसंद नहीं है, ये आरव का आइडिया था, आयु ने सीधे सीधे जवाब दिया। लक्षित काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था, वो अब ज्यादा वेट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने डिनर हो जाने के बाद आयु की तरफ देखा और काफी सीरियस टोन में कहा, सबसे पहले तो मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहूंगा, जो मैंने तुम्हारे लीव लेने से पहले तुमसे काफी बदतमीजी से बात की। मैं हॉस्पिटल में तुम्हारी इमेज भी डाउन नहीं करना चाहता था, लेकिन सारे कलीग्स हमारे बारे में गलत समझते थे, इस बारे में मुझे सच में नहीं पता था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सनम सही कह रही थी, आई रियली लाइक यू। अब जब तुम्हारा मिस्टर खुराना के साथ डिवोर्स हो गया है तो क्या तुम मेरे बारे में आगे सोच सकती हो? लक्षित की बात करने के तरीके से आरव को एहसास हुआ कि वो काफी सुलझा हुआ और अच्छा इंसान था। आयु ने जवाब देने से पहले आरव की तरफ देखा तो आरव ने बीच में कहा, देखो मैं तुम्हें इंटरप्ट नहीं करना चाहता, और सही कहूं तो तुम्हें परेशान करने के लिए मैंने ये डिनर पार्टी अरेंज की थी, बट तुम्हारी बातों से लग रहा है यू आर रियली नाइस पर्सन। व्हाट डू यू मीन लग रहा है? आई एम अ नाइस पर्सन, इसका जो भी डिसीजन होगा मुझे मंजूर है, आई विल नॉट फोर्स हर, लक्षित ने बोहे उठाकर कहा। और तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? लेट हर आंसर। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, ओके फाइन, हमारा कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है और हम फिर से साथ हैं, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना, ये बस यहाँ पर रीजॉइन करने के पर्पज से ही आई थी, हम फिर से इंडिया में सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे ही आरव ने सच बताया, लक्षित ने निराश चेहरे के साथ आयु की तरफ देखा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। लक्षित के चेहरे पर एक निराशा भरी मुस्कुराहट थी और उसने उस लहजे में कहा, इतने टाइम बाद सच में कोई अच्छा लगा था, पर कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी फॉर यू कि तुम अपनी लाइफ में खुश हो, मुझे तो कोई और भी मिल जाएगी। वैसे तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आसपास देखो तो हॉस्पिटल में काफी सारी लड़कियां तुम्हें लाइक करती हैं, अब अपनी जूनियर डॉक्टर सनम को ही देख लो, आयु ने सनम की तरफ से प्रपोजल रखा, जिस पर लक्षित हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। लक्षित के चेहरे को देखकर आयु ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, इसमें इतना सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, वो सच में तुम्हें पसंद करती है। अब तो लिटरली मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। पहले तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारी तरफ से मुझे प्रपोजल देती है, तो अब तुम उसकी तरफ से मुझे प्रपोजल दे रही हो। देखो, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही तुम्हारी लाइफ में था, लक्षित ने कंधे उठाकर कहा। आयू ने सिर हिलाकर कहा, मैं गिल्टी फील नहीं कर रही हूँ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। बस तुम्हें बता रही हूँ कि सनम भी तुम्हें पसंद करती है, यू कैन थिंक अबाउट हर। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, कहकर लक्षित ने बात को वहीं पर खत्म कर दिया। वो काफी उम्मीदें लेकर आया था कि आयु को प्रपोज करेगा, लेकिन उसकी अच्छाई देखकर आरव ने उसे तुरंत सब सच बता दिया था। डिनर के बाद लक्षित वहां से चला गया। साथ ही उसने आयु से यह भी प्रॉमिस किया कि वो हॉस्पिटल से रिजाइन करने के मामले में उसकी हेल्प करेगा। रात को आर्या और आरिशा को सुलाने के बाद आरव और आयु एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। आरव आयु के बालों में हाथ घुमा रहा था। वो धीरे से बोला, चलो मिसेस खुराना, अब मैंने सब सेटल कर दिया है, तुम जैसा चाहती थी वही हुआ। मैंने तुम्हारे सो कॉल्ड वन साइडेड लवर को परेशान नहीं किया और उसे सब सच बता दिया। वैसे कहना पड़ेगा वो एक अच्छा इंसान है। हाँ अच्छा तो है, पर थोड़ा एरोगेंट भी है। वैसे अच्छा हुआ ना, इसी बहाने मेरी हेल्प कर देगा वो, वरना हॉस्पिटल में रिजाइन करना आसान नहीं होता है, आयु ने जवाब दिया। फिर ठीक है, सब खत्म करने के बाद मुंबई चलते हैं, और अपना प्रॉमिस मत भूलना, वहां जाने के बाद मुझे पार्टी देनी है। अब तक मैंने आर्या को सबसे दूर रखा, लेकिन अब और नहीं, आरव ने इंटेंस वॉइस में कहा, वो आगे की प्लानिंग कर रहा था। आयु आरव के कहने का मतलब बखूबी समझ रही थी। उसने जवाब में कहा, मुझे पता है तुम सबसे अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस क्यों करवाना चाहते हो, अभी वो छोटे हैं और कल ही बड़े होकर तुम्हारी खुराना इंडस्ट्रीज नहीं संभाल लेंगे जो तुम उन्हें सबके सामने लाना चाहते हो। जो भी हो, वही मेरा फ्यूचर है, तुम्हें नहीं पता, पर मैं काफी आगे की प्लानिंग करके चलता हूँ। देखना, एक दिन मैं, आरिशा और आर्या तीनों मिलकर खुराना इंडस्ट्रीज को संभालेंगे, तब सिर्फ मुंबई में ही नहीं पूरे इंडिया में इनका नाम होगा। मैंने कभी बिजनेस को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आर्या और आरिशा दोनों साथ होंगे तब हम तीनों कमाल कर देंगे। यहाँ कल का भरोसा नहीं है, और तुम कहाँ 20 साल आगे के बारे में सोच रहे हो। वैसे भी आर्या को न्यूरोसर्जन बनना है। खैर छोड़ो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरा प्रॉमिस भी मत भूलना, तुम्हें माहिरा के साथ हर रिलेशन खत्म करना है, और इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता, आयु ने कहा। आरव ने उसकी बात पर हामी भर दी थी। आयु ने लक्षित को अपना रेजिग्नेशन अप्लाई करने के लिए कह दिया था और वो उसके काम पर लग भी गया था। वहां से जाने के बाद आरव ने काफी कुछ प्लान कर रखा था। देर तक बातें करने के बाद आरव ने कहा, नो मोर टॉक्स, अब मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए। कहते हुए आरव ने आयु को अपनी बाहों में उठाया और पास वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर में वो दोनों अपनी दुनिया में खोए हुए थे।